ऑस्ट्रेलिया में 10 अगस्त की रात जनगणना की यानी सेंसिस की रात थी। जनगणना के फॉर्म के साथ आए सूचना पत्र यानी सर्कुलर के मुताबिक 12 अगस्त तक सेंसिस का फॉर्म ना भरने वाले लोगों के लिए नोटिस जारी किए जाने लगेंगे। आज की इस रिपोर्ट में जानेंगे कि कितना आसान रहा समुदाय के लिए ये फॉर्म भरना, उनकी सेंसिस से क्या उम्मीदें थीं और क्या होगा अगर आपने 12 अगस्त तक सेंसिस का फॉर्म नहीं भरा है। रेखा राजवंशी सिडनी में रहने वाली एक टीचर हैं। वे ऑस्ट्रेलिया के हिंदी साहित्य में भी काफ़ी सक्रिय हैं। उनके मुताबिक जनगणना भरने की प्रक्रिया उनके लिए काफ़ी आसान थी।
तो सेंसिस की प्रक्रिया तो इतनी मुश्किल नहीं थी। ऐसा हुआ कि सेंसस की तरफ से हर रेजिडेंट को एक पत्र आया जिसमें सेंसस नंबर था और पासवर्ड था, जिससे कि फॉर्म भरना आसान हो जाए, ऐसी कुछ सूचनाएं भी थी। और भरने की प्रक्रिया में मदद करने के लिए पत्र के पीछे के हिस्से में लिखा गया था कि हेल्प इन अदर लैंग्वेजेस।
जनगणना के सभी फॉर्म सर्कुलर के साथ नागरिकों को डाक के जरिए पहुंचाए जाते हैं। इस बार डाक के जरिए घरों में पहुंचे फॉर्म के साथ जो सर्कुलर लगा था उसमें हिंदी भाषा का अनुवाद नहीं मौजूद था। रेखा जी कहती हैं,
सेंसस का ये फॉर्म भरने में मुझे तो इतनी मुश्किल नहीं हुई, लेकिन मेरे कुछ मित्रों को इसमें बहुत कंफ्यूजन लगा। एक तो ये कि जो अन्य भाषाओं में हिंदी क्यों नहीं है। कुछ लोगों को धक्का लगा कि भाई हिंदी भी इस फ्लायर में इसमें आनी चाहिए थी क्योंकि अन्य भाषाएं हैं। तो ये एक खास बात मैं कहना चाहती हूँ। और प्रक्रिया तो आसान ही थी।
ऑनलाइन फॉर्म केवल अंग्रेजी में ही भरने का विकल्प मौजूद है। हालांकि जनगणना संबंधी सभी जानकारी ऑनलाइन हिंदी में उपलब्ध है। ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के कम्युनिटी एंगेजमेंट ऑफिसर निर्मल सिंह बताते हैं कि अन्य भाषाओं में सेंसस का फॉर्म भरने के लिए उनके जैसे अफसर तैनात किए गए हैं।
देखिए, ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 150 से लेकर 300 भाषाएं बोली जाती हैं। मतलब अगर हम सिर्फ घर की जो घर में बोली जाने वाली भाषाओं को देखें तो तकरीबन 150 से 300 के आसपास अंदाजा आता है। तो इसमें देखा जाता है कि हम लोग जो ये भाषाएं जो दी हैं, ये देखी गई हैं कि किन भाषाओं को अपनी भाषाओं में उनकी जानकारी मिलना जरूरी है। तो जैसे हिंदी है, हिंदी भाषाई जो लोग हैं वो अंग्रेजी में बड़े सक्षम है, तो उनको इस चीज की जरूरत नहीं है। आप अगर आप उसको पढ़ेंगे तो 14 भाषाएं दी हैं, वो ज्यादातर वो भाषाएं हैं जिनकी अंग्रेजी में सक्षमता कम है। तो उनको अगर कुछ अगर फॉर्म भरना है या कोई सहायता चाहिए तो उसके लिए कोई नंबर दिया गया है कि अगर आपको कोई समस्या आ रही है फॉर्म भरने में तो आप इस नंबर पर कॉल करिए। मोटा मोटा सिर्फ इसमें ये दिया हुआ 14 भाषाओं में। तो हिंदी जो भाषाई जो लोग हैं वो तकरीबन सब अंग्रेजी जानते हैं, अच्छा उनका आईटी में उनका हाथ अच्छा है, तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी कि उनको पत्र पे लिख के दें। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको उनकी अंग्रेजी थोड़ी कम है। इसके बजाय हम लोगों ने अपनी जो वेबसाइट है वहां पे पूरा एक पेज है जिसमें सारी हिंदी में काफी जानकारी उपलब्ध है। और हम लोग जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है या इस तरीके के जो ग्रुप्स हैं उनसे जो बात करते हैं तो उनको हम सबसे पहले उसी तरफ भेजते हैं कि आप इस पेज पे जाइए census.abs.gov.au/hindi। तो वो एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन है जहां से आपको काफी जानकारी मिलेगी।
इसके अलावा सेंसस फॉर्म भरने में मदद के लिए फेसबुक और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया साइट्स पर भी वीडियो और अन्य जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं। एक और सवाल जो सेंसस के लिहाज में सामने आया वो यह कि फॉर्म में अपनी भाषा लिखने के लिए एक से अधिक विकल्प होने चाहिए थे।
विशाली, बहुत सारे लोगों ने कंसर्न अपना जाहिर किया था कि हिंदी इसमें फ्लायर में नहीं जोड़ी गई है। इसके चलते लोगों की इतनी बातचीत हो रही थी कि हमें एक जूम मीटिंग रखनी पड़ी जिसमें बहुत सारे एकोमोडेशंस ने मेलबर्न से, एडलेट से और पर्थ से और सिडनी से उसमें हिस्सा लिया। तो जो मुख्य पॉइंट्स निकल कर आए उसमें था कि जो बुजुर्ग लोग हैं, एल्डर एज के लोग, उनको फॉर्म भरने में पढ़ने में दिक्कत हुई। और दूसरी चीज ये थी कि जहाँ पर ये कॉलम था कि एंसेस्ट्री वाला जो प्रश्न था उसमें लोगों को समझ नहीं आया कि प्रश्न क्या है। और तीसरी जो बात थी, दो या तीन भाषाएं लोग बोलते ही बोलते हैं, तो यहाँ पर लोगों को ऑप्शन मिलना चाहिए था कि वो दूसरी भाषा क्या बोलते हैं। तो एक ये बहुत बड़ी दिक्कत हुई, और हिंदी को लेकर बहुत सारे लोगों ने कंसर्न्स शो भी किए और उन्होंने कहा कि हमको इस बारे में कुछ करना चाहिए।
इस पर ऑस्ट्रेलियाई सांख्यिकी विभाग का कहना है कि
तो जो पहला प्रश्न है कि एंसेस्ट्री की बात है, तो उसमें हम लोगों ने क्या किया है कि जो प्रश्न है जो वो है कि एंसेस्ट्री में आप दो एंसेस्ट्री तक लिख सकते हैं, मतलब इसमें एक माता का एक एंसेस्ट्री आता है, एक पिता का एंसेस्ट्री आता है, दोनों आप लिख सकते हैं कि आप किधर से, आपकी पुरानी एंसेस्ट्री क्या है। दूसरा जो प्रश्न है कि जो घर में बोली जाने वाली भाषा है उसमें एक ही ऑप्शन मिला है, आप उसमें अगर थोड़ी और जानकारी देखेंगे प्रश्न के नीचे, उसमें यह कि अगर आपको एक से या घर में आप दो तीन भाषाएं बोलते हैं तो सबसे ज्यादा भाषा कौन सी इस्तेमाल करते हैं, आपने वो लिखनी है। जैसे मेरे घर में हम हिंदी भी बोलते हैं, पंजाबी भी बोलते हैं, मैं उर्दू भी समझ लेता हूं, और कुछ लोगों के साथ मैं तेलुगु भी बोल लेता हूं, तो लेकिन अब मैं चार भाषाएं लिखूंगा तो जब वो ABS में जाएगा तो वो बड़ी समझना मुश्किल है कि हम किस भाषा को ज्यादा उपयोग करें किन लोगों से बात करने के लिए। जानकारी ही है या इंस्ट्रक्शंस ही ये हैं कि आप जब अपने दोस्तों में बात करते हैं या अगर कोई मेहमान आता है उनके साथ जो बात करते हैं वो ज्यादातर नेचुरल लैंग्वेज कौन सी है आपकी बोलने की, तो वही आपने उसमें लिखनी है।
जहां समुदाय में सेंसस को लेकर इतने सवाल थे, वहीं कई जगहों पर लॉकडाउन की घोषणा भी हो गई थी। निर्मल सिंह बताते हैं कि जिन इलाकों में लॉकडाउन लागू हुआ वहां ऑनलाइन समर्थन मौजूद है।
जहां तक बात है कि जो लॉकडाउन का एरिया है वहां हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि जो लोग हैं वो ऑनलाइन फॉर्म भरें, कि अगर किसी को उसमें सवाल पूछना है तो वो हमेशा हमारी जो हेल्पलाइन है TIS वाली, उस पे अगर आप कॉल करेंगे आप घर बैठे वो सारे प्रश्नों की जानकारी ले सकते हैं।
पर वे लोग क्या करें जिनकी डेडलाइन या तो छूट गई है या 10 तारीख तक ABS को जिनका फॉर्म नहीं मिला है। निर्मल जी बताते हैं कि ABS में डेडलाइन और पेनल्टी को लेकर काफी रियायत है।
अगर 10 तारीख तक आपने फॉर्म नहीं भी भरा है या अगर आपने पेपर फॉर्म भर दिया है वो हमको पहुंचने में हफ्ता लग जाता है, तो ये नहीं है कि आपको 12 तारीख को आपको फाइन आ जाएगा, वो हम लोग एक चिट्ठी भेजेंगे कि जी आपका ऑनलाइन फॉर्म या पेपर फॉर्म अभी हमें नहीं मिला है, कृपया भर दीजिए, वो सिर्फ एक रिमाइंडर है। और उसके बाद फिर अगर चिट्ठी पे भी नहीं भर रहे हैं तो फिर हमारे जो फील्ड ऑफिसर्स हैं वो जाके लोगों से बात करते हैं कि अगर उनको कोई अगर और तकलीफ आ रही है या उनको फॉर्म समझ में नहीं आ रहा है या भाषा का प्रॉब्लम है या कुछ और तकलीफ है तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसको वहां पे उनके डिटेल के हिसाब से उनको हेल्प कर सकते हैं भरने में। लेकिन ऐसे कोई डेडलाइन की ये हमने इस तारीख तक नहीं भरा तो हमको फाइन लग जाएगा, ऐसा वैसा नहीं है।
SBS हिंदी को ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से प्राप्त लिखित जानकारी में भी ये बात कही गई है कि कई बार लोग सेंसस में हिस्सा तो लेना चाहते हैं पर भूल जाते हैं। 12 तारीख से जारी होने वाले पत्र केवल रिमाइंडर के तौर पर भेजे जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति सेंसस में हिस्सा लेने से इनकार करते हैं तो उन्हें लिखित में सेंसस में भाग लेने के लिए आदेश दिया जाता है। अगर वे व्यक्ति इस आदेश का भी पालन नहीं करते तब उन पर $222 प्रतिदिन के दर पर जुर्माना लगाया जा सकता है। SBS हिंदी की इस खबर को आपके लिए पेश किया है वृषाली जैन ने।